हरे कृष्ण। तो चूंकि रामनवमी का उत्सव बहुत निकट आ रहा है तो हम लोग राम की चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से राम की चर्चा कर रहे हैं। इष्ट कैलाश मंदिर में भी हो रही राम की चर्चा और इस मंदिर में राम की चर्चा हो रही है। तो आज हम राम की कुछ चर्चा सुनेंगे पद्म पुराण से। पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर राम कथा का वर्णन हुआ है और ये वर्णन कर रहे हैं शेष जी। आप समझ रहे हैं, शेष जी अगर वर्णन करें तो फिर कैसा वर्णन होगा आप सोचिए। शेष जी, शेष जी जो है सबसे पहले कथा के वक्ता हैं। उनके हजार मुख हैं, शेष जी हजार मुख हैं, तो वे जो है सबसे पहले कथा के वक्ता हैं और सब कथाएं उनके ही मुखों में सुरक्षित हैं। जैसे स्टोर कहते हैं ना, स्टोरेज है ना, तो कंप्यूटर में स्टोरेज किया जाता है, तो उनके मुखों में सब कथाएं, भगवान की जितनी कथाएं हैं सब उनके मुख में ही उनका स्टोरेज हुआ है ना। तो वो सुना रहे हैं, तो मैं कुछ उसमें से चर्चा पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये घटना उस समय की है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या में वापस आए हैं। तो शेष जी कहते हैं कि अपनी राजधानी को देखा, जब श्री राम ने अपनी राजधानी को देखा, कितने साल के बाद देखा, 14 साल के बाद देखा, तो श्री राम को बहुत प्रसन्नता हुई। इधर भरत ने अपने मित्र और सचिव सुमुख को, मित्र और सचिव, सचिव हैं लेकिन मित्र, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं भरत जी, है ना, राम को जो है स्वामी मानते हैं, वे राम का अपने को भाई नहीं समझते, हालांकि राम के भाई हैं लेकिन अपने को राम के भाई नहीं समझते हैं, राम के समान अपने को नहीं समझते हैं बल्कि सेवक समझते हैं, इसलिए सेवक को भी अपना मित्र मानते हैं। जो सचिव है उसको भी अपना मित्र मानते हैं और उसका नाम क्या है, सुमुख। सुमुख को प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा, क्या, उत्सव मनाओ, राम के आने का उत्सव मनाने के लिए आदेश दिया। भरत जी बोले नगर के सब लोग शीघ्र ही श्री राम के आगमन का उत्सव प्रारंभ करें। बहुत बड़ा उत्सव, राम आए हैं 14 साल के वनवास के बाद, मना तो क्या आदेश है, घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुहार करके साफ की जाएं, उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाएं, पूरी जो नगरी है अयोध्या नगरी है, पूरे नगर में ऐसा होना है, हर एक घर के आंगन में नाना प्रकार के ध्वजाएं फहराई जाएं और प्रकाश का प्रबंध किया जाए, और श्री राम का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कथन के अनुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली भांति भांति की रचना करें। भरत जी कह रहे हैं अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति भी लगाओ कि कैसे नगर को सजा सकते हो। जो कुछ मैंने बताया उसके अलावा भी जितनी अधिक शोभा सजावट आप लोग कर सकते हैं अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति के अनुसार करो, हर व्यक्ति करे शोभा सजावट करे। तो शेष जी कहते हैं भरत जी के वचन सुनकर सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट और तोरणों से सुशोभित किया। नगर में जाकर उसने सब लोगों में श्री राम के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी सब लोगों को। और समय मीडिया बहुत तेज था, उस समय मीडिया बहुत तेज था, इस समय की मीडिया से ज्यादा तेज था, है ना, और लोग कानों कानों में केवल मुख से बोलते और सुनते इसी में समाचार बिजली की तरह फैलता था, क्योंकि लोगों के पास इतने ये सब काम नहीं थे, इतने सब बेकार के कामों में जो है भागा दौड़ी जो कर रहे हैं लोग, ये सब नहीं था उस समय, लोगों का जीवन जो है इतना व्यस्त नहीं था, वे हमेशा भगवान की चर्चा करते थे सुनते थे, इसलिए जीवन बहुत सरल था और सब आवश्यकताएं बड़ी आसानी से पूरी होती थी, इसलिए ये समाचार कोई भी समाचार हो बड़ी जल्दी फैलता था। यहाँ आजकल तो ये हाल है कि पड़ोसी घर में किसी का जन्म हुआ है मरण हुआ हा? किसी को पता नहीं होता है अपने पड़ोसी घर में। जब समाचार पत्र पढ़ेगा तब पता चलेगा कि मेरे पड़ोसी घर में क्या हुआ या मीडिया से, मीडिया के द्वारा, है ना। लेकिन उस समय ऐसा कोई मीडिया नहीं था, है ना। लेकिन बहुत तेजी से राम के आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोगों ने जब सुना कि श्री राम अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान के वैर से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। सोचिए अयोध्यावासी क्यों? क्योंकि सिद्धांत है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा हो वैसी प्रजा। प्रजा अगर, राजा अगर अपने सुख भोगों का त्याग करे तो प्रजा फिर कैसे सुख भोग करेगी? गीता में भगवान क्या कहते हैं, यदि आचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरोजना। ये श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं। तो राम के वनवास से जो है एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली प्रजा को कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? तपस्या है, तपोदिव्यम, जिसके द्वारा बुद्धि शुद्ध हो और ब्रह्म सुख का अनंत अनुभव हो, है ना। तो ये जो है राम के वनवास में भी जो है इतना बड़ा गुण है। क्या गुण है? कि राम ने जो है 14 साल का वनवास स्वीकार किया है, है ना। तो किसी भी प्रकार का जो घर में सुख भोग होते हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। जैसे अच्छा भोजन है और जो है अच्छी सैया, उसमें सोना, ये सब बंद है, है ना। तो ये सब चीजें चूंकि उन्होंने सब बंद किए हैं तो प्रजा ने भी जो है सब सुख भोग बंद कर दिए, है ना। लेकिन इस समय क्या है? वही सिद्धांत है यथा राजा तथा प्रजा। राजा चोर है, नेता लोग चोर हैं, बदमाश हैं, झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, तो प्रजा भी वैसे ही नहीं, तो प्रजा भी वैसे ही है ना। तो प्रजा वैसे ही बनेगी जैसे राजा या नेता, है ना। तो यहां पर और भरत जी को राजा बनाया तो भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया, भरत जी ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया है? और वे भी बलकल वस्त्र धारण करते हैं, वे राजाओं के वस्त्र नहीं धारण करते हैं, भरत जी बलकल वस्त्र धारण करते हैं, राजा के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, राम के खड़ाओं को उन्होंने सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं सेवक की तरह नीचे बैठते हैं। और भरत जी भी चूंकि राम नंगी जमीन में सोते हैं, नंगी जमीन सोते हैं, कोई सैया नहीं, तो भरत जी भी लेकिन जमीन में नहीं सोते हैं, 3 हाथ नीचे एक गड्ढा बना करके सोते हैं कि मैं सेवक हूं, तो स्वामी अगर जमीन में सोते हैं तो मैं और नीचे सोऊंगा। तो प्रजा के लिए कितना बड़ा एक आदर्श ये बना, ये भरत जी के अंदर भी जो है भोगों की इच्छा नहीं है। अगर राम वनवास कर रहे हैं तो मैं कैसे भोग सकता हूं, है ना। भरत जी ने भोगों का त्याग कर दिया। अब प्रजा क्या सोचेगी? प्रजा क्या सोचेगी कि ऐसे राम का चरित्र है, ऐसे भरत का चरित्र है, तो फिर हम कैसे हैं, है? तो इसलिए इसमें बताया गया है कि प्रजा भी भगवान की वजह से दुखी होकर सुख भोग का परित्याग कर चुके थे, है? तो 14 साल का जो समय था वो उनके लिए भी इसी प्रकार का था, वनवास जैसा। अयोध्या की जो प्रजा थी वो भी एक प्रकार से वनवास कर रही थी, हालांकि थे तो शहर में, लेकिन वनवास की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी प्रजा भी। तो फिर क्या हुआ? वैदिक ज्ञान से संपन्न पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुशल लिए धोती और चादर से सुसज्जित हो श्री राम के पास आए, जिन्होंने संग्राम भूमि में अनेक वीरों पर विजय पाई थी, वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय भी उनके समीप आए। धन धान्य से समृद्ध वैश्य भी सुंदर वस्त्र पहनकर श्री राम के निकट उपस्थित हुए। तो आज के दिन जो है ये लोग सुंदर वस्त्र धारण कर रहे हैं राम के स्वागत। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे और वे शूद्र जो ब्राह्मणों के भक्त थे अपने जाति आचार में दृढ़ता पूर्वक स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे अयोध्यापुरी के स्वामी श्री राम के पास आए। व्यवसायी लोग जो अपने अपने कर्म में स्थित थे वे सब भी भेंट में देने के लिए अपनी अपनी वस्तु लेकर श्री राम के समीप आए। इस प्रकार राजा भरत का संदेश पाकर आनंद की बाढ़ में डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकार के कौतुकों में प्रवृत्त होकर अपने महाराज के निकट आए। तदनंतर श्री राम ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूर्ण देवताओं से घिर कर मनोहर रचना से शोभित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। इसमें क्या बताया गया है कि देवता लोग जो है अपने अपने विमान में बैठे हुए श्री राम को घेरे हुए हैं। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले वानर भी उछलते कूदते हुए श्री राम के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में आए। उस समय उन सबकी पृथक पृथक शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर श्री राम पुष्पक विमान से उतर गए। इसका मतलब क्या है कि राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया लेकिन जमीन में नहीं है, वो पुष्पक विमान में है। तो उनका जो विमान है आकाश मार्ग में चल रहा है और देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठे हुए उनके पुष्पक विमान के कुछ चारों ओर घेरे हुए हैं देवता लोग भी। और जो वानर हैं आकाश मार्ग में चलने वाले हैं तो उछल उछल करके आकाश मार्ग में चल रहे हैं। ऐसा दृश्य है अयोध्या के ऊपर। और देखिए देवताओं के विमान है या पुष्प विमान है, ये आकाश में ठहर भी सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, कोई इसमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। कैसे पेट्रोल होता है किसान, क्या बताइए, एयरप्लेन में पेट्रोल पेट्रोल चलता है, पेट्रोल जो भी हो कोई भी फ्यूल, इसमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। इच्छा के अनुसार आप इच्छा करें विमान रुक जाएगा, आकाश में रुक जाएगा, जहां इच्छा करें वहां चलेगा, है ना। कोई प्लेन क्रैश की भी जो है संभावना नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं ना। तो ऐसे सब विमान देवताओं के विमान हैं और राम का पुष्पक विमान है ना। पुष्पक विमान की शोभा तो बहुत ही अलग है ना? लेकिन जितने भी विमान हैं देवताओं के हैं और राम का पुष्पक विमान है ना, ये ऐसे हैं जो कि आज तक कोई मतलब खोज नहीं पाया, आज का विज्ञान नहीं इसको जान सकता, समझ नहीं सकता ये। अब भगवान क्या करते हैं, उतरे, अब पुष्प विमान से उतर गए और शीघ्र ही श्री सीता के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय भी अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए जाते हुए वीणा पड़ाव और भेरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत मागत और बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे रघुनंदन आपकी जय हो, सूर्य कुलभूषण श्री राम आपकी जय हो, देव दशरथ नंदन आपकी जय हो, जगत के स्वामी श्री राम आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए पुरवासियों की बातें भगवान को सुनाई दे रही थीं। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया था, जिससे बड़ी शोभा हो रही थी। शरीर रोमांचित था, है ना, उनका शरीर रोमांचित था। शरीर में इतने वस्त्र भी नहीं होते थे, इतने वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं होती थी, है ना। क्रमशः आगे बढ़कर भगवान की सवारी गली और चौराहों से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग में जा पहुंची, जहां चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल और पल्लव बिछे थे। उस समय नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान की मनोहर छवि निहारती हुई आपस में कहने लगी। तो नगर की जो स्त्रियां हैं खिड़की से दर्शन करती हैं ना। तो ये नगर की जो स्त्रियां हैं, जो कुल स्त्रियां होती हैं, ऊंचे कुल की स्त्रियां होती हैं, वो पुरुषों के साथ नीचे सड़क में नहीं जाती हैं, पुरुषों के साथ मिलती नहीं है वो। तो अगर कुछ देखना है तो अपने छज्जे से देखेंगी, खिड़की से देखेंगी। तो वे स्त्रियां जो है बोल रही हैं, सखियो वनवासिनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गई, 14 साल के लिए हमें राम का दर्शन नहीं मिला, है ना। तो किनको मिला राम का दर्शन, दूसरी प्रकार की स्त्रियों को मिला। राम का दर्शन स्त्रियों के लिए तो बहुत सुख की बात है, बहुत आनंद की बात है। तो हमें तो राम का दर्शन नहीं मिला 14 साल के लिए, तो किनको दर्शन मिला, भीलों की कन्याओं को दर्शन मिला, है ना, तो उनका उनका सौभाग्य जागा। जिन्होंने नील कमल के समान श्री राम के मुख कमल का दर्शन किया, अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया है। ये अयोध्या वासिनी स्त्रियां बोल रही हैं राम के लिए, है ना। और ये जो पुलिंद कन्याएं हैं, इनके बारे में बताया गया है, गर्गसिंध में बताया गया है कि जो पुलिंद कन्याएं हैं, जो भीलों की कन्याएं हैं, तो इन्होंने राम का जब दर्शन किया था तो राम के प्रति उनके अंदर पति का भाव पैदा हो गया, है ना। लेकिन अपने उनको बड़ी लज्जा भी आई, बड़ी ग्लानि भी हुई कि हमारे अंदर ऐसी भावना क्यों आ रही है कि हम तो किसी भी योग्य नहीं है, हम इतने योग्य नहीं, फिर हमारे अंदर ये भाव क्यों आ रहा है। तो उससे बहुत अपराध मान करके, हमारा बहुत अपराध हो रहा है तो आत्महत्या करने लगी हूं, है ना। और राम चूंकि सबके हृदय विराजमान है तो एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वो जो है उनको समझाते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग जो है अपने को अपराधी नहीं मत समझो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं हो रहा है और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी अगले जन्म में, तो ब्रज में तुम गोपियां बनोगी। तो वही पुलिंद कन्या गोपियां जो है वो ब्रज में हुई। तो ये जो पुलिंद कन्या जो वनवास काल में जो राम का दर्शन करती थी, तो राम मतलब कहते हैं कि इस जीवन काल में तो मैं ये जो है तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं, ये तुम्हारी इच्छा गलत नहीं है, भगवान कहते हैं। और जो अयोध्या वासिनी स्त्रियां हैं जो राम का दर्शन करती हैं, तो उनके अंदर भी पति का भाव पैदा होता है भगवान के प्रति, है ना। तो अयोध्या वासिनी स्त्रियां भी जो है ब्रज में गोपियां बनी हैं, उनका एक अलग ही यूथ है, ऐसे 100 यूथ हैं ब्रज में गोपियों के, अलग प्रकार की स्त्रियों के। तो अयोध्या वासिनी स्त्रियों के भी जो है एक यूथ है, अयोध्या वासिनी गोपियां, पुलिंद कन्या गोपियां जैसे। तो यहां पर ये अयोध्यावासिनी स्त्रियां बोल रही हैं कि हे सखी, श्री राम के मुख की ओर तो देखो, कमल की शोभा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित उनका मुख है, उनका मुख देख करके तुम धन्य हो जाओगी। अहो, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे आज हमारी आंखों के सामने आए हैं, स्त्रियां बोल रही हैं। अवश्य हम लोग अत्यंत बड़भागनी हैं, देखो इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है, लाल लाल ओठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं और इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण ये बातें कहने वाली अवधपुर की स्त्रियां भगवान के दर्शन कर प्रसन्न हो रही होने लगी। तब जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था, उन पूर्ववासी मनुष्यों को अपनी दृष्टि से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री राम ने माता के भवन में जाने का विचार किया। कहां? माता के भवन में। वे राजाओं के राजा और अच्छी नीति का पालन करने वाले थे, अतः पालके पर बैठे हुए सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के घर में गए। सबसे पहले कैकेयी के घर में गए, है ना। अपनी माता के घर में क्यों नहीं गए पहले? कि अपनी माता के घर में तो फिर जाना ही है ना, फिर तो पूरा समय वहीं देना है ना। तो पहले कहां गए? कैकेयी के घर में। कैकेयी लज्जा के भार से दबी हुई थी, अतः श्री राम को देख करके भी वो कुछ नहीं बोली। बड़ी लज्जा की बात थी, है ना, और उसको बहुत अपयश भी मिला था, है ना, तो इस कारण से कुछ नहीं बोली। बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगी। श्री राम ने माता को लज्जित देखकर बिना योग्य वचनों से सांत्वना देते हुए कहा, आपको लज्जित है अपने अपराध के कारण, तो फिर भगवान जो है उसको और लज्जित नहीं करते। लेकिन लज्जा ये जो है गुण है, लज्जित होना, अपनी गलती करके लज्जित होना एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है, है ना। तो कहके बहुत लज्जित हो रहे हैं। तो राम क्या बोले? श्री राम बोले, मां, मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है, अब बताओ तुम्हारी आज्ञा से समय कौन सा कार्य करूं। बहुत विनम्र भगवान क्या कह रहे हैं, है? कि मैंने पूरा पूरा आपकी आज्ञा का पालन किया है, अब आप और आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। श्री राम की बात सुनकर भी कहके अपने मुंह को ऊपर ना उठा सकी और धीरे धीरे बोली, बेटा राम, तुम निष्पाप हो, अब तुम अपने महल में जाओ। क्या कही बोली? कहां जाओ? अपने महल में जाओ। माता के वचन सुनकर श्री राम ने भी उन्हें नमस्कार किया, फिर वहां से सुमित्रा के भवन में गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था, उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण से श्री राम को देकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, बेटा तुम चिरजीवी रहो। श्री राम ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, माँ लक्ष्मण जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने के कारण तुम रत्न गर्भा हो। रत्न गर्भा, जिसके गर्भ से रत्न पैदा हो, रत्न गर्भा। तो श्री राम जो है सुमित्रा माता को बोल रहे हैं, क्यों आपने ऐसे रत्न को जन्म दिया, पुत्र रत्न। कौन है वो? लक्ष्मण, लक्ष्मण है, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण है। तो तुम रत्न गर्भा हो, बुद्धिमान लक्ष्मण जिस प्रकार मेरी सेवा की है, जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया है। रावण ने सीता को हर लिया, उसके बाद मैंने जो इन्हें प्राप्त किया है वो सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। राम कह रहे हैं, यह कहकर और सुमित्रा के देह में आशीर्वाद को सिरोधार करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। सोचिए कैसा दृश्य है, राम अपने पुष्प विमान से उतर गए तो देवता लोग भी अपने विमान से उतर गए, और राम पैदल चल रहे हैं तो उनके साथ साथ देवता लोग भी पैदल चल रहे हैं। राम के साथ साथ राम की माता के महल में भी जा रहे हैं देवता लोग भी। माता को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित और हर्षमग्न देखकर श्री राम तुरंत पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों को पकड़ लिया। कौन सी माता? कौशल्या। माता कौशल्या का हृदय बेटे का मुंह देखने के लिए उत्कंठा से बेहबल हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हुआ, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद के आंसू प्रवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री राम ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई है, बहुत दुर्बल हो गई, मुझे देखकर इन्हें कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था को देख करके श्री राम ने कहा, श्री राम बोले, मां मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की। क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है, निश्चय मैं बड़ा अभागा हूं। राम ऐसा कह रहे, मैं बड़ा अभागा हूं, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करना। राम कह रहे, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रज वीर से उत्पन्न हुआ केड़ा ही समझना चाहिए। क्या करूं, पिता की आज्ञा से मैं दंडकारण्य में चला गया था। वहां रावण सीता को हरकर लंका में ले गया था, किंतु तुम्हारी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैंने पुनः इन्हें प्राप्त किया है। ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणों में पड़ी है, इनका चित्त सदा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहता है। राम कह रहे हैं, श्री राम की बात सुनकर माता कौशल्या ने अपने पैरों में पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, सीते तुम चिरकाल तक अपने पति की जीवन संगिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव वाली बहू, तुम दो पुत्रों की माता होकर अपने इस कुल को पवित्र करो। आशीर्वाद दे रही बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्रियां तीनों लोकों में कहीं भी दुख नहीं पाती हैं, ये सर्वथा सत्य है। विदेह कुमारी, तुमने श्री राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया है। सीता से यह कहकर माता कौशल्या चुप हो गई, हर्ष के कारण पुनः उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया। तब श्री राम के भाई भरत ने उन्हें पिता का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया, इसलिए मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर राज अभिषेक का मुहूर्त पूछा और उनके बताए हुए उत्तम नक्षत्र से युक्त अच्छे दिन को शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष के साथ श्री राम का अभिषेक कराया। सुंदर व्याघ्र चर्म के ऊपर सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाया। सुन रहे हो क्या? एक सुंदर व्याघ्र चर्म के ऊपर सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाकर महाराज श्री राम उस पर विराजमान हुए। समझ रहे हैं? ये संपूर्ण पृथ्वी के राजा उस पर विराजमान हुए। उसी दिन से साधु पुरुषों के हृदय में आनंद छा गया। सभी स्त्रियां पति के प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गई। जिस दिन राम का राज्याभिषेक हुआ उस दिन सबका दिमाग जो है शुद्ध हो गया, सबका दिमाग शुद्ध हो गया है ना, और सब अपने अपने कर्म में उनका जो है मतलब मन लगने लगा कि किसका जो कार्य है, जो उचित कार्य है, जिसको को करना चाहिए है ना, सबका मन उसी प्रकार लगा है। स्त्रियां है ना पति के प्रति भक्ति रखती हुई प्रतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गई। संसार के मनुष्य कभी मन से भी पाप का आचरण नहीं करते थे, देखो ऐसा है मन से नहीं। राम के राज्याभिषेक के द्वारा इतना प्रभाव केवल इस घटना से। देवता दैत्य नाग यक्ष असुर और बड़े बड़े सर्प भी न्याय मार्ग पर स्थित होकर श्री राम की आज्ञा का पालन करने लगे। सभी परोपकार में लगे हुए थे, सबको अपने धर्म के अनुष्ठान में सुख और संतोष की प्राप्ति होती थी। विद्या से ही सबका विनोद होता था, विद्या से विनोद होता है ना, विनोद यानी मनोरंजन, विद्या से विनोद होता था है ना। कोई क्लब क्लब की जरूरत नहीं थी मनोरंजन के लिए, आजकल क्लबों में लोग जाते हैं मनोरंजन के लिए, या शराब मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा ये सब चीजें मनोरंजन के लिए लोग करते हैं, तो समय इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी मनोरंजन के लिए, विद्या में ही सबका मनोरंजन होता था। दिन रात शुभ कर्मों पर ही सबकी दृष्टि रहती थी। श्री राम के राज्य में चोरों की तो कहीं चर्चा ही नहीं थी, चोरी कहीं घटना ही नहीं है, कभी कभी नहीं सुनाई पड़ती थी चोरी की घटना श्री राम के राज्य में। कैसा आश्चर्य है, जोर से चलने वाली हवा भी, जोर से हवा चलेगी लेकिन रास्ते में चलते हुए पथिक के सूक्ष्म वस्त्र को भी नहीं उड़ा दी थी। लोग सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे और सिले हुए कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं थी श्री राम के राज्य में। आपने कपड़ा डाल लिया तो कपड़ा जो है उड़ेगा नहीं हवा से, हवा जोर से चलेगी जैसे आपको अच्छा लगेगा, हवा चलने से जोर की हवा चलती है, पंखे की हवा अच्छा लगता है, तो हवा जो है शरीर को सुख प्रदान करने की चलती थी, लेकिन बहुत पतला भी कपड़ा हो, सूक्ष्म हल्का भी कपड़ा हो तो भी नहीं उड़ेगा आपको। अभी तो जो है इसीलिए कपड़े सिलाने पड़ते हैं, थोड़ा सा हिलोगे तो हवा जो कपड़ा जो है उतर जाएगा, गिर जाएगा, गिर नहीं कपड़ा नहीं गिरेगा। श्री राम का स्वभाव बड़ा दयालु था, याचकों के लिए कुबेर थे। तो श्री जी कहते हैं, ये कथा श्री जी सुना रहे हैं वात्स्यायन मुनि को है ना। तो हे मुनि, जब श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसराज रावण के वध से प्रसन्न चित्त हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी सुंदर कथा है। देवता बोले, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले श्री राम आपकी जय हो, आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठा पूर्वक वर्णन करेंगे। प्रलय काल में आप संपूर्ण लोकों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभु आप जन्म और जरा के दुखों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्ति संपन्न श्री राम आपकी जय हो, आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुल में प्रकट होने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव शरीर प्राप्त किया है उनका उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। शिव और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। देवता लोग क्या कह रहे हैं, आप काम देव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाली कांति धारण करते हैं। परम पावन दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभयदान ना दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। नाथ, जब जब आसुरी शक्ति हमें दुख देने लगे तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ अपने भक्तों द्वारा पूजित अजन्मा और अविकारी हैं, तथापि अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। आपके सुंदर चरित्र मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करते हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है और देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है, जो सबके आदि हैं परंतु जिनका कोई आदि नहीं है, जो अजर रूप धारण करने वाले हैं यानी तरुण रूप, जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जो कामदेव को लज्जित करने वाले हैं, साक्षात शिव जी जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और जिन्होंने अपने शत्रु रावण का बलपूर्वक वध किया है, वे श्री राम सदा विजयी हों। ब्रह्मादि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके विनीत भाव से श्री राम को बारंबार प्रणाम किया। श्री राम देवताओं की स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए, उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े देख करके बोले। श्री राम ने कहा, देवताओं तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो। सुनने ध्यान से, क्या राम क्या कह रहे हैं? ऐसा वर मांगो जो अत्यंत दुर्लभ हो, जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो और जिसे अभी तक किसी देवता दानव यक्ष राक्षस ने भी ना प्राप्त किया हो, मांगो कोई। आपका होमवर्क सोचो ऐसा क्या हो सकता है। ऐसा वरदान मांगो जो बहुत दुर्लभ हो और आज तक किसी ने भी नहीं प्राप्त किया, देवता दानव यक्ष राक्षस किसी ने भी नहीं प्राप्त किया, ऐसा वर मांगो। ये सोचने वाली बात है। श्री राम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? देवताओं से कह रहे हैं। देवता बोले, स्वामी आपने हम लोगों के शत्रु रावण को जो वध किया है उसी से हम सब उत्तम उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुंचाए तब तक आप हमारे इसी तरह तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीर श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की, फिर इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, देवताओं तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल और रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, देखो ऐसा वरदान दे रहे हैं भगवान कि जो तुमने मेरी स्तुति की है तो इस स्तुति को प्रातःकाल और रात्रि में एक बार रोज पाठ करेगा, उसको कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। हरि बोल। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के हृदय में मेरे चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा। हरि बोल। यो कहकर श्री राम चुप हो गए और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। कहां चले गए? अपने अपने लोक को चले गए। इधर श्री राम अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका पालन करने लगे। उनके शासन काल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी घर में रोग का प्रकोप नहीं होता था, किसी भी रोग का प्रकोप नहीं होता था किसी घर में, है ना? इसका मतलब अस्पताल ही नहीं थे। अब इतने अस्पताल खुल रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ देखो कितनी उन्नति हो रही है। आजकल जो है वैज्ञानिक कितनी उन्नति कर रहे हैं, कितने अस्पताल, कितनी दवाइयां दुकान खुले, कितनी कितनी दवाइयां, है ना? राम के राज्य में सब नहीं था, ये कमी है। राम के राज्य की ये कमी है, कोई अस्पताल नहीं, कोई दवाई नहीं मिलती, रोग कहीं प्रकोप रोग ही नहीं है, है? ना कभी इति दिखाई देती यानी अनावृष्टि अतिवृष्टि, ये सब इति कहलाती है, अनावृष्टि अतिवृष्टि नहीं है, ना शत्रु से कोई भय है किसी को। वृक्षों में सदा फल लगे रहते हैं, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती है। जहां 20 किलो उत्पन्न होना है तो वहां 200 किलो पैदा होता है अनाज, है ना? स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनात रहता है, उन्हें निरंतर अपने पति के संयोग का सुख प्राप्त होता है और विरह का क्लेश नहीं भोगना पड़ता है। सब श्री राम के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये काम तो कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए ना, है ना? अगर ये काम नहीं करोगे तो फिर माया की सेवा करोगे ना। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में प्रवृत्त नहीं होती है, उनके मन में कभी पाप का संकल्प नहीं होता है। श्री राम के मुख को देखते हुए लोगों की आंखें स्थिर हो जाती, एकटक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सब कहते निरंतर करुणा से भरा रहता था, सदा यज्ञ करते हैं और राज्य की जड़ मजबूत होती है। समूचे राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहराती रहती है, जहां सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके, ऐसे क्षेत्रों से देश भरा हुआ है। उस राज्य का देश सुंदर, प्रजा उत्तम थी, सब लोग स्वस्थ रहते हैं, गौएं बहुत अधिक और घास पात का अच्छा सुविधा है। स्थान स्थान पर देव मंदिरों की श्रेणियां राम राज्य की शोभा बढ़ाती थी। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे। बाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा देते थे, वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे, कमलों से भरे तालाब वहां की भूमि का सौंदर्य बढ़ाते थे। अब सुनिए कुछ है, इसमें शब्दों का चमत्कार है। शेष जी जो है राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें शब्दों का कुछ चमत्कार है, वो आप देखिए, बड़ा इसमें जो है आश्चर्य है। राम राज्य में केवल नदी ही सदंभा थी, जनता कहीं सदंभा नहीं थी। सा माने सहित, दंभ माने दंभ घमंड, दंभ समझते दिखावा है ना। तो प्रजा सदंभा नहीं थी, मतलब दिखावा कोई नहीं करता था, दिखाने के लिए हम करते ना कोई धर्म का, जिसको दंभ बोलते हैं। तो शिव जी क्या कह रहे हैं कि राम के राज्य में प्रजा सदंभा नहीं थी, केवल नदियां ही सदंभा थी। अब सदंभा शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, सा माने सहित, दंभ माने दंभ सहित, तो कोई सदंभा नहीं था लेकिन नदियां सदंभा थी। अब सदंभा का दूसरा अर्थ है सत अंभा, अंभा माने जल वाली और सत माने अच्छा पानी, सत है ना, बिस्लेरी का पानी मिलता था नदियों में, नदियां सदंभा थी है ना, सत अंभा और सदंभा। तो दो प्रकार से इसका जो है विशेषण किया जाता है सदंभा। तो प्रजा सदंभा नहीं थी, प्रजा में जो है दिखावा ढोंग धर्म का ढोंग नहीं था, लेकिन नदियां सदंभा थी, यानी अच्छे जल वाले थी, अच्छा पानी मिल रहा है नदियों में, सदंभा थी। अच्छा फिर क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल ही कुलीन थे, उनके धन कुलीन नहीं थे। अरे कुलीन भी, कुलीन का भी जो है दो अर्थ निकलता है। तो एक तो जितने भी वर्ण थे सब कुलीन थे, मतलब अच्छे कुल के, अच्छे कुल थे, कुलीन अच्छे कुल में पैदा हुए, जितने भी चारों वर्ण के लोग थे कुलीन थे, अच्छे कुल वाले थे, लेकिन धन कुलीन नहीं था। तो कुलीन का दूसरा अर्थ क्या होता है, कु माने बुरे कार्यों में, लीन माने लगा, तो धन कुलीन नहीं था, यानी धन बुरे कामों में नहीं लगता था। आप समझ रहे, कुलीन शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो अच्छे कुल, आप तो कुलीन है, आप तो कुलीन है, आपका धन कुलीन नहीं है। कुलीन, लीन माने लगा हुआ, कु माने बुरे कार्यों में, तो धन बुरे कार्यों में नहीं लगता, तो धन कुलीन नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग कुलीन है ना। फिर है राज्य की स्त्रियों में ही विभ्रम था, विद्वानों में कहीं विभ्रम नहीं था। विभ्रम शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो है कि हाव भाव विलास, स्त्रियों में विभ्रम था, शोभा तो ये स्त्रियों में था, लेकिन विद्वानों में विभ्रम नहीं था। विभ्रम का मतलब भ्रांति, विभ्रम का दूसरा अर्थ क्या है, भ्रांति। तो राम के राज्य में विद्वानों में कोई विभ्रम नहीं था, मतलब भ्रांति नहीं थी, किसी प्रकार की भ्रांति नहीं, मतलब एक निश्चित उनके पास ज्ञान था, निश्चित सिद्धांत था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, विभ्रांति है ना। तो ये शब्द का चमत्कार है। फिर नदियां ही कुटिल मार्ग से चलती थी, प्रजा नहीं, नदियां ही कुटिल मार्ग से चलती थी। नदियों का रास्ता होता है टेढ़ा मेढ़ा, नदी का मतलब ये है जो टेढ़े मेढ़े चले वो नदी कहलाती है ना। तो नदियां ही कुटिल मार्ग से चलती थी, लेकिन प्रजा कुटिल मार्ग से नहीं चलती, मतलब कुटिलता से नहीं चलती थी, समझ रहे है ना। तो ये चमत्कार है। श्री राम के राज्य में तम था, किसमें तम था, कृष्ण पक्ष की रात्रि में ही तम था। तम माने अंधकार, श्री राम के राज्य में अंधकार होता था, कब, कृष्ण पक्ष की रात्रि में। मनुष्य में तम नहीं था, तम का मतलब अज्ञान नहीं होता, तो तम था राम के राज्य में लेकिन मनुष्य में नहीं था। तम किसमें तम था, कृष्ण पक्ष की रात्रि में तम था। और वहां की स्त्रियों में ही रज का संयोग होता था, मनुष्य में नहीं। रज का मतलब रजोगुण भी है, और रज का मतलब स्त्रियों में होता है ना, रज है ना, तो स्त्रियों में रज का संयोग था लेकिन मनुष्य में रज नहीं था, यानी रजोगुण नहीं था। तो ये भी शब्द का चमत्कार है। धन से वहां के मनुष्य ही आनंद थे, उनका भोजन आनंद नहीं था। आनंद, आनंद का मतलब कि अंधे नहीं। तो धन से मनुष्य आनंद थे, धन से अंधे नहीं होते थे। धन से लोग अंधे हो जाते ना, धन व्यक्ति को अंधा कर देता है ना, तो लोग धन से आनंद नहीं थे, धन के द्वारा अंधे नहीं होते थे, लेकिन आनंद था। किसमें, उनका भोजन आनंद था, उनका भोजन आनंद यानी अन्न रहित नहीं था, ये अन्न ना हो ना। और उनके राज्य में केवल रथ ही अनय थे, कर्मचारियों में अनय नहीं था। अनय के दो अर्थ होते हैं, अनय, उनके रथ ही अनय थे यानी लोहे से रहित। आय का मतलब लोहा, अनय का मतलब लोहे से रहित। रथ बनते थे उनमें लोहा नहीं लगता था, राम के राज्य में रथ जो बनते थे उनमें लोहा नहीं लगता, अनय होते थे। लेकिन राजकर्माचार्यों में अनय नहीं था, अनय का मतलब न्याय भी है, आप समझ रहे हैं। तो शब्द का चमत्कार है, राज के कर्मचारियों में अन्याय नहीं था, अनय नहीं था। और फरसे फामड़े चमर छत्रों में ही दंड देखा जाता था, राम के राज्य में दंड था। राम के राज्य में दंड था, किसमें था दंड, फरसा, फरसा फावड़ा चमर और छत्र, इसमें दंड होता है ना, लेकिन अन्यत्र कहीं भी दंड नहीं था, किसी को दंड नहीं मिलता था, समझ रहे। हरि बोल। अभी नींद आ रही, ठीक से विश्राम नहीं करते ना, मंगल आरती इसके बाद फिर पूरा जप, 16 माला जप कर लिया, अब क्लास में नींद आ रही। क्या कहा मैंने, राम के राज्य में दंड नहीं था, कहां दंड था, फरसे फावड़े चमर छत्र, इनमें दंड था, और कहीं दंड नहीं था। और कहीं दंड नहीं था। दंड का मतलब दंड बोलते पनिशमेंट है ना। राम के राज्य में और कहीं दंड नहीं था। और जलों में ही जड़ता की बात सुनी जाती थी, मनुष्य में नहीं। तो जड़ता का मतलब जलत्व भी होता है, और जड़ता का मतलब मूर्खता भी है। तो जल में जड़ता थी, मनुष्य में जड़ता नहीं थी। फिर दुर्बलता, स्त्रियों की कटी में ही दुर्बलता थी, अन्यत्र कहीं दुर्बलता नहीं थी। ये कमर जो है, जो पतली होती है ना, तो सुंदरता का लक्षण है। तो स्त्रियों की कमर में दुर्बलता थी, तो ये सुंदरता का लक्षण है, या और कहीं दुर्बलता नहीं थी राम के राज्य में, और कहीं दुर्बलता नहीं थी। औषधियों में ही कूट का योग देखा जाता था, मनुष्यों में कूट का नाम नहीं था। तो कूट के दो अर्थ हैं, ये तो कूट एक दवा का नाम है, औषधियों में कूट का योग होता था, ये मनुष्यों में कूट नहीं था। कूट का मतलब कुष्ठ रोग, मनुष्य में नहीं था। रत्नों में ही छिद्र होता था, प्रजा के शरीर में रत्नों में ही छिद्र होता था, रत्नों में छिद्र होता था, और मूर्तियों के हाथों में शूल रहता था, प्रजा के शरीर में कोई छिद्र और शोल नहीं होता था, रत्नों में छिद्र होता था, हाँ, और कहीं छिद्र नहीं था। तो दो अर्थ है ना छिद्र के, छिद्र माने दोष भी होता है, हाँ, आपके हाँ, मैं छिद्रों को हमेशा देखता हूं, यानी दोषों को देखता हूं, हाँ, तो क्या बताया गया है, राम के राज्य में छिद्र होता था, तो किसमें होता था, रत्नों में ही छिद्र होता था, रत्नों में छिद्र किया जाता है ना, तभी तो पहने, तभी तो पहनेंगे, हाँ, तो छिद्र कहां होता था, रत्नों में ही छिद्र होता था, लेकिन मनुष्यों में कोई छिद्र नहीं होता था, आपके व्यवहार में जो है, किसी के व्यवहार में कोई छिद्र नहीं होता था, कमी, छिद्र माने कमी है ना, तो राम के राज्य में छिद्र होता था, किसमें होता था, रत्न में होता था, आभूषणों में छिद्र होता था, लेकिन लोगों के व्यवहार में छिद्र नहीं होता था। और शूल, शूल होता था, मूर्तियों के हाथ में शूल होता था, लेकिन प्रजा के शरीर में शूल नहीं होता था। तो शूल के दो अर्थ हैं, तो शूल होता है ना, है ना, मूर्तियों के हाथ में शूल होता है, और शूल का मतलब कष्ट भी है, दर्द, उसको भी शूल बोलते, उदर शूल है ना, पेट का दर्द, तो शूल किसी के शरीर में शूल नहीं होता था। तो शूल के दो अर्थ है ना, तो राम के राज्य में शूल होता था, कहां होता था, मूर्तियों के हाथ में होता था शूल, लेकिन किसी के शरीर में शूल नहीं होता था। और कंप होता था, कंप होता था शरीर में, कंप होता था, कैसे होता था कंप, सात्विक भाव के कारण, भक्ति के रस में, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, कंप होता था ना, तो भक्ति के रस में कंप होता था, इन भय के कारण किसी को कंप नहीं होता था। राम के राज्य में कंपन जो है भय के कारण किसी को कंपन नहीं होता था, लेकिन कैसे कंपन होता था, भक्ति के रस में कंपन होता था। राम के राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे, हाथी ही मतवाले होते थे, मनुष्य में कोई मतवाला नहीं था। तरंगे, राम के राज्य में तरंगे होती थी, कहां, तालाबों में, लेकिन किसी के मन में तरंगे नहीं होती थी, मन कैसा होता था, शांत स्थिर। तरंगे होती थी राम के राज्य में, कहां, तालाबों में होती थी, और किसी के मन में नहीं होती थी तरंगे। कांटे ही तीखे होते थे, तीखापन जो राम के राज्य में था वो कांटों में था, किसी के स्वभाव में नहीं था तीखापन, समझ रहे, तीखा स्वभाव किसी का तीखा नहीं होता था राम के राज्य में। और बाणों का ही गुणों से वियोग होता था, राम के राज्य में बाणों का ही गुणों से वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं। गुण का मतलब रस्सी भी है ना, तो बाण जो है जब छोड़ते हैं ना, तो पहले रस्सी में जो है बाण को मतलब बिठाया जाता है ना, तब छोड़ा जाता है, तो गुण से वियोग हुआ, तो बाण का ही गुण से वियोग होता था, तो गुण का मतलब रस्सी है, ये मनुष्यों का गुण से वियोग नहीं होता था। आप समझ रहे हैं, ये वर्णन राम के राज्य का वर्णन है। दृढ़ बंध उक्ति जो है केवल कविताओं में होती थी, लेकिन और किसी के अंदर दृढ़ बंध नहीं होता था। दृढ़ बंध एक कविता की जो है कुछ विशेषता होती है, दृढ़ बंध, तो दृढ़ बंध ये कविता में होता था, है ना, अच्छी प्रकार से बंधी हुई कविता, है ना, तो ये दृढ़ बंध जो है, दृढ़ बंधन कविता में होता था, लेकिन मनुष्य में किसी को दृढ़ बंधन नहीं होता था, यानी कैद नहीं किया जाता था, है ना, पक्की जेल, दृढ़ बंध मतलब पक्की जेल। तो राम के राज्य में जो है दृढ़ बंध ये मनुष्य में नहीं होता था, किसमें होता था, कविता में होता था केवल। तो प्रजा को श्री राम से प्यार, लाल प्यार प्राप्त होता था, अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर पालन करते हुए संपूर्ण देश की रक्षा करते थे। इस प्रकार से काफी चर्चा है राम के विषय में। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों की ओर से कोई चर्चा या कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी, हैंड माइक
बहुत धन्यवाद जो जिस तरीके से वर्णन पूरा राम राज्य का हो रहा था, मैं माफी चाहूंगा मैं झपकियां भी ले रहा था, पर उसके बावजूद काफी चीजें गानों में गई और इस तरीके की कुछ चीजें हैं, कुछ पहलू इस तरीके की हम जैसे परीक्षित महाराज के राज्य में भी देखते हैं, युधिष्ठिर के में भी देखते हैं, तो क्या मतलब वजह है कि इस लोगों का एक तो चलो आप कह सकते हैं कि भगवान थे, बात खत्म हो जाती है, तो भगवान थे जी सब कुछ ऐसा था, फूल खिले गुलशन गुलशन था, और दूसरी क्या वजह हो सकती है कि ऐसा क्यों था?
ऐसा है कि हाँ, अच्छा प्रश्न है। युधिष्ठिर महाराज का भी राज्य था, परीक्षित का भी राज्य था, सब था, और फिर राम के राज्य की विशेषता क्यों? क्योंकि हाँ सही कह रहे हैं कि राम राज्य की बात हमेशा आती है ना, इसका कारण क्या है? अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो द्वारका का राज्य था, कृष्ण का भी राज्य था, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं आती? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर राम राज्य नहीं, राम का जो राज्य था ये अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 साल तक चला, आप समझे? युधिष्ठिर महाराज का राज्य 36 साल, परीक्षित महाराज का राज्य भी इसी तरह से कुछ समय ज्यादा नहीं चला, कृष्ण का भी राज्य पूरा जीवन काल उनका 125 साल का था, तो है ना, तो कृष्ण का भी राज्य है ना, लेकिन राम का राज्य 10,000 साल तक, आप सुन रहे हैं? तो ये विशेषता है राम के राज्य की। और दूसरी बात ये भी समझो कि सीता जी को जो है जो पुत्र प्राप्त हुए, सीता जी को जो पुत्र प्राप्त हुए तो 10,000 साल के बाद प्राप्त हुए, क्योंकि तो राजर्षि हैं, जो राजर्षि होते थे तो विवाह के बाद तुरंत ही वो पुत्र पैदा नहीं करते थे, और ऐसी कुछ गलत विधि भी नहीं होती थी कि पुत्र पैदा ना हो और सहवास करें, ऐसा भी नहीं था, राजर्षि होते थे तो पुत्र उत्पन्न नहीं करते थे वे, वे पुत्र उत्पन्न करते थे बाद में ही जब जो है उनका जीवन काल जो है मतलब करीब करीब जब समाप्त होने वाला होता था, तो 10,000 साल के बाद ही राम ने जो है पुत्रों को जन्म दिया, दो पुत्र हुए, ठीक है ना, और तब सीता जी का वनवास हुआ, तो राम का जो है सीता जी के साथ राज्य 10,000 साल तक चला और सीता जी ने पुत्र को जन्म दिया, तो सीता का कोई इसमें दोष नहीं था कि सीता जी ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, बल्कि ये ऐसी विधि थी, राजा लोग ऐसी विधि का पालन करते थे कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे कि अगर मान लीजिए पुत्र का जन्म हो जाता, जैसे राम राजासीन हुए, 42 साल की अवस्था में राम का राजाभिषेक हुआ, अगर पुत्र का जन्म हो गया होता तो 10,000 साल तक अगर राज्य करते तो पुत्र का भी तो क्या ही 10,000 साल की हो गई होती, आप समझ रहे नहीं? तो 10,000 साल तक जो है सीता और राम ने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया और राज्य का पालन किया, राज्य में रहे, सुखपूर्वक रहे, प्रजा को भी सुख दिया, उसके बाद जो है सीता ने दो पुत्र उत्पन्न किए, ठीक है ना, तो ये विधि है, राजा लोग जो इस तरह की विधि का पालन करते थे, ऐसे राजर्षि होते थे, ठीक है, और कोई प्रश्न या कोई चर्चा? हाँ जी, हैंड माइक।
हरे कृष्ण, आपने बताया कि जो अयोध्या में जो लोग प्रजा थी उनके मन में कोई तरंग नहीं थे और उनके मन में कोई इस तरह का गलत भाव या विचार नहीं था, तो धोबी को अपने ही राजा और रानी के प्रति कैसे गलत भाव आ गए?
हाँ, उनका अच्छा प्रश्न है कि धोबी को जो है ऐसा गलत भाव क्यों आया, है ना, इसके पीछे काफी मतलब कारण है, और 10,000 साल तक सोचिए, 10,000 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं? 10,000 साल तक कुछ नहीं हुआ, राम जो है सीता को लेकर के आए वनवास से, राजाभिषेक हुआ, 10,000 साल तक कुछ नहीं हुआ, और राम का जो है मतलब गुप्तचर विभाग बहुत सक्रिय था, गुप्तचर कि भाई सामने कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे कोई बोलता हो शायद, अपने घर में कोई बोलता हो, अपनी पत्नी से बात करता है, है? नहीं, कुछ नहीं था। तो इसके पीछे कई कारण है, जो भी हो अभी इतना समय नहीं है चर्चा करने की, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि एक मतलब जो घटना हुई और राम ने जो है मतलब सीता का त्याग किया, इसमें बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है और बहुत बड़ा गुण है राम का। इसमें सीता का गुण और राम का गुण इतना मतलब है कि इतना गुण है कि हम सोचें तो सोचते रहें कितना बड़ा गुण है, है ना। तो समय भी नहीं इतनी चर्चा करने का। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री राधिका रमण जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलदेव और गौरताई की जय।